बीए हिस्ट्री ऑनर्स के सभी श्रोताओं का मैं रुद्र भानु प्रताप हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं रुद्र भानु प्रताप आपके लिए लेकर उपस्थित हूं यूरोप का इतिहास। तो आइए अध्ययन करते हैं यूरोप के इतिहास का, जिसमें हमें सबसे प्रथम अध्याय है यूरोप की क्रांति और यूरोप का सुधार। तो आइए अध्ययन करते हैं यूरोप की राज्य क्रांति का। समाज की भौतिक स्थिति में ही परिवर्तन की अनिवार्यता निहित होती है। यह परिवर्तन स्वतः धीरे धीरे होता रहता है, लेकिन जब गतिरोध पैदा होता है तो समाज में एक उद्वेलन पैदा होता है। समाज के जिस वर्ग के हाथ में सत्ता होती है वह तो परिवर्तन नहीं चाहता, या उसी हद तक चाहता है जहाँ तक उसके हित सुरक्षित रह सकें। अन्य लोग जब इस स्थिति से बहुत असंतुष्ट होने लगते हैं और विरोध के मुखर होने की संभावना हो जाती है, तब सुधार किए जाते हैं ताकि सतह पर थोड़े परिवर्तन का भ्रम खड़ा करके मूलतः समाज का स्वरूप वहीं बना रहे और सत्ताधारी वर्ग को लाभ होता रहे। लेकिन कभी कभी सुधार पर्याप्त नहीं होते, या सुधार होते ही नहीं और असंतोष बढ़ता रहता है। असंतुष्ट वर्ग में जब चेतना आती है और वह क्षुब्ध होता है तो उसे अपनी ताकत और विरोधियों के कमजोरियों का एहसास हो जाता है, तब वह उठ खड़ा होता है और समाज के स्वरूप में कुछ मौलिक परिवर्तन करना चाहता है। ऐसे ही संघर्ष में क्रांति का जन्म होता है। फ्रांस में 16वीं सदी तथा 17वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। वहाँ का पूंजीपति वर्ग सचेतन और सुसंगठित हो चला था, क्योंकि बढ़ता हुआ व्यवसाय उनके हाथ में था। लेकिन राजतंत्र का केंद्रीकरण बढ़ता ही जा रहा था और सारे देश की धुरी एकमात्र राजा हो गया था। यह स्थिति केवल कुछ कुलीन और राजपरिवारों के हाथ में निहित थी। कमोबेश यही स्थिति सारे यूरोप में थी। केवल इंग्लैंड में पार्लियामेंट के माध्यम से राज्य की सत्ता में अधिकाधिक लोग केवल इंग्लैंड में पार्लियामेंट के माध्यम से राज्य की सत्ता में अधिकाधिक लोग हिस्सेदार होते जा रहे थे। मध्य यूरोप के देशों में भी प्रबुद्ध निरंकुशता के नाम पर थोड़े बहुत सुधार हो रहे थे, लेकिन फ्रांस में परिवर्तन सबसे अधिक आवश्यक था और वहीं यथास्थिति टूट नहीं रही थी। ऐसी स्थिति में असंतोष, चेतना और परिवर्तन के लिए सक्षमता का एहसास उमड़ घुमड़ कर एक अयोग्य राजा के सिद्धांत के विरुद्ध 1789 में फूट पड़ा। पूरे 10 वर्षों तक फ्रांस में उथल पुथल होती रही। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में बहुत से आमूल परिवर्तन हुए और फ्रांस अब पहले जैसा नहीं रह सका। इसलिए इसे क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के बीच उस समाज और उस व्यवस्था में थे जिसे पुरातन व्यवस्था कहते हैं। पुरातन व्यवस्था और क्रांति के बीच, इसे एक बार और सुने, यह हेडिंग है, पुरातन व्यवस्था और क्रांति के बीच। क्रांति के पहले की व्यवस्था को पुरातन व्यवस्था कहते हैं। क्रांति के बीज कहाँ और क्यों थे, इसे समझने के लिए उस भूमि का सर्वेक्षण आवश्यक है। फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का विश्लेषण करने पर ही हम जान सकेंगे कि क्रांति क्यों हुई और फ्रांस में ही क्यों हुई। इस संदर्भ में हम उन विचारों से भी परिचित हो जाएंगे जिन्होंने परिवर्तन के अनुकूल मानसिकता का निर्माण किया था। राजनीतिक स्थिति, यह हेडिंग है, इसे एक बार और ध्यान से सुने। राजनीतिक स्थिति, हेनरी चतुर्थ के समय से ही फ्रांस पर बूर्बू वंश का राज्य था। राष्ट्रीय राजतंत्र के अभ्युदय के साथ यह वंश फ्रांस की बढ़ती राष्ट्रीय चेतना के साथ एकाकार होता जा रहा था। लेकिन बूर्बू वंश अपने अतीत में खोया हुआ था, न पुराना भूलता था और न ही नया सीखता था। द नेवर फॉरगेट एनीथिंग, दे नेवर लर्नड एनीथिंग। रिसलू ने जब सामंतों का दमन कर उन्हें सुंदर कठपुतलियों में परिवर्तित कर दिया था, राजा निरंकुश होता जा रहा था। लुई 14वें ने तो स्वयं को ही राज्य का मूर्त रूप, अर्थात मैं राज्य हूँ, इसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम द स्टेट, कहा करता था। उसने जैसा विकेंद्रीकरण किया था उसमें राजा का योग्य होना आवश्यक था। वह स्वयं बड़ी शान शौकत से राज्य करता था और फ्रांस के लिए प्राकृतिक सीमाओं की तलाश में निरंतर युद्ध करने के बावजूद अपनी नई राजधानी वेरसाई पर संपूर्ण यूरोप का ध्यान केंद्रित कर रखा। लेकिन मरने के समय उसे अपनी असफलता का एहसास हो चला था। उसने अपने उत्तराधिकारियों को सलाह दी थी जनहित के कार्य करना, युद्ध न करना और यही सलाह का और सही सलाहकार रखना। लुई पंद्रहवा जब गद्दी पर बैठा तो उसे परम प्रिय कह के पुकारा गया, लेकिन वह केवल एक कमजोरी ही नहीं बल्कि एक विलासी और फ्रांस तथा अपने हितों के प्रति लापरवाह सिद्ध हुआ। उसने पड़ोसियों से युद्ध मोल लिया और फ्रांस के पुराने प्रतिद्वंदियों अंग्रेजों से बिना तैयारी ही युद्ध की करता रहा। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार और सप्तवर्षीय युद्धों में फ्रांस पराजित हुआ, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। वेरसाई का जीवन विलासिता और षड्यंत्रों का केंद्र हो गया। राजा पर रखैलों का प्रभाव बढ़ता गया और राज्य का तंत्र खोखला होता गया। यहाँ तक कि उसके राज्य को रखैलों की सरकार कहा गया। मृत्यु के पूर्व उसे भी इसका बोध हुआ और उसने कहा था, मेरे मरने के बाद प्रलय होगा। और वस्तुतः उसके मृत्यु के 15 वर्ष बाद ही फ्रांस में क्रांति हुई जिसने बूर्बो वंश की सत्ता समाप्त कर दी। लुई 16वां यदि एक साधारण गृहस्थ होता तो उसका जीवन सफल कहा जा सकता था, लेकिन जिस अवधि में वह देश का राजा था वह उसके लिए सर्वथा अनुपयुक्त था। उसमें केवल नेतृत्व की क्षमता नहीं थी, न तो वह स्वयं निर्णय कर सकने की क्षमता था और न ही वह किसी दूसरों की सलाह को समझ सकता था। उसे विलासी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वह महल की खिड़की से शिकार खेलने और तालों की मरम्मत करने जैसे निरर्थक कार्यों में मनोरंजन ढूंढता था। राज्य की समस्याओं में उसकी कोई विशेष रुचि नहीं थी, नहीं इसके लिए वह कुछ कर सकता था। एक के बाद एक उसने कई मंत्रियों को नियुक्त किया, परंतु दृढ़ विचारों के न होने के कारण किसी न किसी की शिकायत सुनकर उन्हें बर्खास्त भी कर देता था। उसकी अदूरदर्शिता और अनभिज्ञता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि 1789 में जुलाई मास तक घटित फ्रांस की घटनाओं का वह महत्व ही नहीं समझ पाया। उसकी पत्नी मारी आंतुआनेत इसको एक बार और सुने। उसकी पत्नी मारी आंतुआनेत उसके लिए एक बोझ थी। यदि वह सुंदरी केवल श्रृंगार और दिखावे में व्यस्त रहती तो ठीक था, परंतु वह राजनीति में भी हस्तक्षेप करती थी। वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और ऑस्ट्रिया से पुरानी दुश्मनी होने के नाते फ्रांस के लोग उसे विदेशी और घृणित ऑस्ट्रियन कहते थे। उसकी माँ और भाई बराबर यह चेतावनी देते थे कि वह राजनीति में दखल ना दे, लेकिन उसे इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वह लुई को न तो सही सलाह दे सकती थी और न ही उससे प्रेम करते हुए उसके हित की बात सोच सकती थी। वर्साई के बाहर की दुनिया से वह सर्वथा अनभिज्ञ थी। तभी तो उसने उन लोगों को किक खाने की सलाह दी जिन्हें रोटी तक नहीं मिलती थी। ऐसे महिला क्रांति के पहले तो बोझ थी ही, क्रांति के बाद उसके षड्यंत्रों में फंसकर लुई ने और अधिक गलतियां की और अपने मौत का सामान जुटाया। फ्रांस की व्यक्तिगत संपत्ति और राजकोष में कोई अंतर नहीं था। राज परिवार मनमाना ढंग से धन खर्च कर सकता था। राजा और रानी दोनों में से कोई भी देश की तात्कालीन परिस्थितियों का आकलन कर सकने में सक्षम नहीं थे और न ही किसी में स्थितियों को संभालने की योग्यता थी। तुर्जो, नेकर और मिराबू जैसे लोगों ने जब उचित सलाह देकर उन्हें संकट से उबारना चाहा, तब भी वे यह निर्णय नहीं कर सके कि उचित और अनुचित क्या है। राजा को कोलबेर और रिसलू जैसे मंत्री उपलब्ध नहीं थे। राजागण सामंतों का विरोध करने में मध्यम वर्ग के सहयोग करते आए थे, लेकिन इस वर्ग को इस तरह की मान्यता नहीं मिली थी जिससे वह राजा का पूर्ण समर्थक और तंत्र का वाहक बन जाए। सामंत अकर्मण्य हो गए थे, कर्मचारी अनियंत्रित एवं भ्रष्ट थे। फ्रांस की राजनीतिक जीवन राजधानी में कैद था। लगभग 175 वर्षों में फ्रांस की प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन नहीं हुआ। फ्रांस में प्रतिनिधि सभा को स्टेट्स जनरल कहते हैं। इसे एक बार और सुने। फ्रांस में प्रतिनिधि सभा को स्टेट्स जनरल कहते हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक संस्थाएं भी निर्जीव थीं। प्रांतों में केंद्र का नियंत्रण ढीला पड़ गया था। संपूर्ण देश कई तरह की इकाइयों, धार्मिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक आदि में बटा हुआ था। फ्रांस की सीमाओं पर स्थिति इस फ्रांस की सीमाओं पर स्थित प्रांत जैसे ब्रितानी, प्रोवांस आदि फ्रांस में मिलाए गए तो उनके कानूनों और संस्थाओं आदि में विशेष परिवर्तन नहीं किए गए और अलग अलग प्रांतों में उनकी ऐतिहासिक विभिन्नताएं बनी रहीं। पूरे देश में लगभग 285 स्थानीय विधि प्रणालियां प्रचलित थीं। व्यापार की दृष्टि से भी देश विभाजित था, जगह जगह चुंगी की सीमाएं थीं। उन्हें बांधने वाला एकमात्र उपादान केंद्रीय प्रशासन था जो कि कमजोर पड़ता जा रहा था। पदों पर नियुक्तियों का आधार योग्यता नहीं क्रय शक्ति था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नगण्य थी। एक प्रकार का वारंट जिसे लेत्र द कासे कहते हैं जारी कर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना मुकदमा चलाए ही उसे जेल में रखा जा सकता था। कानून का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया था। इस प्रकार प्रजा की धन संपदा ही नहीं उसके शरीर के साथ भी मनमाना व्यवहार होता था। फ्रांस के राजनीतिक जीवन में एक तरह की सड़ांध पैदा हो गई थी। इस जीवन में न तो इंग्लैंड के समान गतिशीलता थी और न ही प्रथा के समान तथाकथित प्रबुद्धता। सारी व्यवस्था एक वर्ग, एक व्यक्ति और एक परिवार के हाथ में निहित थी तथा वह व्यक्ति स्वयं अपने हितों के प्रति अचेत और अयोग्य था। बाकी सभी लोग अपने ढंग से अपने हित साधन में रत थे। सारांश यह कि फ्रांस की राजनीतिक जीवन भ्रष्ट, गतिहीन और जर्जर हो चला था और सत्ताधारी लोग यथास्थितिवाद के पक्ष में चिपक कर परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे। अगला हेडिंग है सामाजिक दशा। इसे एक बार और सुने। फ्रांस की सामाजिक दशा। फ्रांसीसी समाज बुरी तरह विषम और विघटित था। समाज में तीन तरह के लोग रहते थे, पादरी, सामंत और तृतीय वर्ग। इस कैथोलिक बहुल देश में पादरियों का प्रभाव पूरे जनजीवन पर छाया हुआ था। इन पादरियों का महत्व भी उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार घटता बढ़ता था। पद खरीदे जा सकते थे। सामंत के पास फ्रांस की अधिकाधिक भूमि थी, परंतु जब से उन जमींदारों और रियासतों की देखभाल के कर्मचारी कर्मचारी करने लगे थे, तब से वह शोभा यात्राओं और मनोरंजन केंद्रों में गुड़िया की तरह सुशोभित मात्र रहने लगे थे। ये दोनों वर्ग ही विशेषाधिकार से संपन्न थे और समाज में उनका सम्मान था। कुलीनों और अभिजात वर्ग का महत्व होने से अयोग्य और भ्रष्ट पादरी तथा सामंतगण समाज में प्रतिष्ठित थे, जबकि योग्य और संभ्रांत मध्यम वर्ग या सामान्य जन किंचित सम्मान से भी वंचित रह जाता था और कभी कभी उसे अपमानित भी होना पड़ता था। तृतीय वर्ग समाज के बहुमत किसान, मजदूर और नौकरी पेशा करने वाले लोगों का था। ये लोग सामाजिक विषमता और प्रतिदिन की अपमानजनक स्थितियों से त्रस्त रहते थे। विशेषकर नगरों में रहने वाले लोग, जिनके पास कुलीनता के अतिरिक्त सब था, अत्यधिक क्षुब्ध रहते थे। ऐसी परिस्थिति में धर्म का वही स्वरूप स्वीकार्य था जो चर्च को मान्य हो। पादरी का समर्थ वर्ग भ्रष्ट और चापलूस होने के बावजूद समाज के हर अंग पर हावी था। गैर कैथोलिकों को सामान्य नागरिक भी नहीं कहा जाता था और प्रोटेस्टेंट लोगों के विवाह, उनकी संतान और संपत्ति संबंधी इच्छाओं को कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं था। यही विषमता एक ओर तो धीरे धीरे आपसी तनाव की वृद्धि करने और दूसरी ओर नई चेतना के प्रसार का कारण बनी। इसलिए कभी कभी यह भी कहा जाता है कि 1789 की क्रांति का कारण न तो किसानों की आर्थिक शिकायतों तक सीमित है और न ही मध्यम वर्ग की राजनीतिक क्षुब्धता तक, उसे अमीरों की प्रतिक्रियावादी नियत में ढूंढना चाहिए। आर्थिक स्थिति, यह हेडिंग है, इसे एक बार और सुने। फ्रांस की आर्थिक स्थिति। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए वहां की कृषि, उद्योग, कर व्यवस्था, व्यवसाय और लोगों का जीवन देखना पड़ता है। लफेवर के अनुसार फ्रांसीसी समाज का ढांचा सामंती था, लेकिन आर्थिक शक्ति पूंजीपति वर्ग के हाथ में आती जा रही थी। यही विसंगति फ्रांस के आर्थिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी। फ्रांस यूरोप के दो ऐसे देशों में से है जिसे प्रकृति ने हर तरह से संपन्न बनाया है। फ्रांस का किसान सामान्य स्थितियों में भी अपनी जरूरत के लिए अनाज तो पैदा कर लेता था, लेकिन उसमें अधिकांश संख्या भूमिहीनों की थी। देश की अधिकांश जमीन सामंतों के पास थी और उस पर किसान काम करने के लिए मजबूर था। चूंकि सामंतों की जरूरत पूरी हो जाती थी, इसलिए पैदावार में उन्हें विशेष रुचि नहीं थी। किसान जिस थोड़े बहुत जमीन से पैदा करता था, उसमें अधिकांश भूमिकर, धर्मकर और नमक कर के रूप में राज्य या सामंत को कर देना पड़ता था। अर्थात किसान जिस जमीन पर खेती करता था, उसके बदले उसे अत्यधिक कर देना पड़ता था। नमक की बिक्री पर तो राज्य का एक अधिकार था। करों की असमानता की स्थिति यह थी कि एक स्थान से दूसरे स्थान के मूल्य में कभी कभी 30 गुना फर्क होता था। हर तरह से संपन्न सामंत और विशेषाधिकार पादरी के कारण विशेषाधिकार पादरी इन पदों से मुक्त थे। अर्थात एक बार और सुने, हर तरह से संपन्न सामंत और पादरी विशेषाधिकार के कारण इन करों से मुक्त थे। यह कहावत चरितार्थ हो चली थी कि सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और जन सामान्य कर देता है। इसे इंग्लिश में भी सुने, द नोबलिस्ट फाइट, द क्लर्जी प्रे एंड द पीपल पे। करों के अतिरिक्त किसानों को समय समय पर उपहार भी देने पड़ते थे। भ्रष्ट कर्मचारियों को खुश रखना पड़ता था और दूसरों के लिए बेगारी भी करनी पड़ती थी। जमींदार भी किसान पर कर लगाते थे और अपने मनोरंजन आदि के लिए किसानों को ही इस्तेमाल करते थे। लुई 15वां के समय से ही राज्य की ओर से कृषि का महत्व समाप्त हो गया था। गांव से राज्य का संबंध केवल कर वसूलने तक था। अकाल की स्थिति होने पर भी राज्य का तंत्र इस संबंध में चुपचाप कान बंद किए रहता था। फ्रांस का उद्योग 17वीं शताब्दी से उन्नत हो चला था और उसके निर्यात पर यूरोप के राज्य निर्भर रहते थे। सल्ली और कोलैबर ने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किए थे। फ्रांस का विदेशों से व्यापार बढ़ा था। समकालीन अर्थशास्त्री मोसांस, इसे एक बार और सुने, समकालीन अर्थशास्त्री मोसांस के अनुसार इस अवधि में निर्यात पिछली शताब्दी की अपेक्षा 4 गुना अधिक बढ़ा था। औद्योगिक क्रांति के लक्षण उभर रहे थे, लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य जहां यूरोप विशेषकर इंग्लैंड में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे, वहीं फ्रांस के शासक व्यवसाय को भी बृहत्तर संदर्भ में न देखकर इसे अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। राजा के अयोग्य और कड़े नियंत्रण के कारण उद्योग और व्यापार की प्रगति नहीं हो पा रही थी। बेरोजगारी बढ़ने लगी। लियो और बोर्डो जैसे औद्योगिक नगर तथा राजधानी पेरिस में बेरोजगार इकट्ठा होने लगे। पिंडारियों और लुटेरे बढ़ रहे थे। तस्करों का भी बोलबाला था। इससे तनाव बढ़ रहा था। ये लोग बिल्कुल ही उत्पादक तत्व नहीं रह गए थे। सातोब्रिया ने बताया है कि उत्तराधिकार के दोषपूर्ण नियमों के कारण कभी कभी एक व्यक्ति को एक कुत्ता, एक कबूतर और एक खरगोश के अतिरिक्त उत्तराधिकार में कुछ नहीं मिलता था। इस तरह उसकी अरुचि बढ़ती जाती थी। दूसरी ओर वर्सायी में शान शौकत और विलासतापूर्ण जीवन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वहां पर सब कुछ पूर्ववत चल रहा था। जरूरतें पूरी करने के लिए कर या ऋण वसूली का आसान नुस्खा इस्तेमाल होता था। दरबारी जीवन के बारे में कहा जा सकता है कि ये लोग सांसारिक सुखों के उपभोग में अत्यंत निपुण हो चले थे। विनाश की ओर बेखटक बढ़ते जा रहे थे। राज्य का कोई बजट नहीं था। आमदनी के अनुसार खर्च करने के बदले खर्च के हिसाब से आमदनी की नीति जारी थी। 1666 से 1763 तक फ्रांस लगातार युद्धरत रहा और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भी उसने अंग्रेजों के विरुद्ध सेना भेज दी। इन युद्धों का खर्च बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। यदि समर्थ पर कर मुक्त हो तो कर और ऋण की भी एक सीमा होती है। परिणाम यह है था कि स्थिति डवाडोल होती जा रही थी, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता था कि फ्रांस की स्थिति यूरोप के अन्य राज्यों से भी खराब या भयावह थी। वास्तव में एक फ्रांसीसी का अन्य यूरोपीय लोगों की अपेक्षा बेहतर जीवन था और इस निजी स्थिति से उसे नई चेतना के आधार पर मौजूद परिस्थितियों को समझने और नतीजा पर पहुंचने का अवसर प्राप्त होता था। वास्तविकता यह थी कि फ्रांस का अर्थतंत्र उस स्थिति में पहुंच गया था जहां कुछ आमूल परिवर्तन के बिना उससे विकास संभव नहीं था। पूंजीपति वर्ग राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने को बेताब था, क्योंकि यह विडंबना कब तक झेलता कि आर्थिक शक्ति उसके हाथ में होने पर भी वह राजनीतिक शक्ति से वंचित था। विशेषाधिकार, यह हमारा अगला हेडिंग है। फ्रांसीसी समाज की विषम समस्याएं विशेषाधिकार की थी। यह एक प्रकार का रोग हो चला था। परंपरा के आधार पर पादरियों और सामंतों को विशेषाधिकार प्राप्त हुए थे। समाज का उद्धार करने वाला चर्च था, एक कैथोलिक ईसाई का सही जन्म तभी माना जाता था जब वह चर्च की शरण में जाने के संस्कार द्वारा एक नाम और संरक्षण प्राप्त कर ले। कैथोलिका का विश्वास है कि मनुष्य पाप में जन्म लेता है और ईश्वर की अनुकंपा से उसे मुक्ति मिल सकती है। यह अनुकंपा तभी उपलब्ध होगी जब व्यक्ति को किसी चर्च का संरक्षण प्राप्त हो जाए। इस तरह संरक्षण और उद्धारक के रूप में चर्च की महत्ता का व्यवहारिक जीवन में अर्थ था कि चर्च की संपत्ति पर कर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह संपत्ति ईश्वर के नाम समर्पित है। यही नहीं, धार्मिक कार्यों के नाम पर चर्च को जनता से दंश मांस नामक कर वसूलने का भी अधिकार था। असंगति यह थी कि पादरियों का संपन्न वर्ग कर वसूल तो करता था लेकिन स्वयं कर नहीं देता था। मध्य युग में वास्तविक शक्ति सामंतों के हाथ में थी। राजा नाम मात्र का था, उसे सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था। इन सामंतों के पास अपनी सेना भी थी जो युद्ध होने पर राजा की ओर से भी लड़ती थी। राजा की सेवा करने के बदले सामंतों को प्रतिष्ठा के अतिरिक्त यह विशेषाधिकार भी प्राप्त था कि उसे सामान्य लोगों की तरह न समझा जाए। वह राज्य के करों से स्वयं तो मुक्त था ही, लेकिन अपनी रियासत में जनता पर तरह तरह के कर भी लगा सकता था। वह किसान से पैदावार का एक हिस्सा या उससे कुछ मवेशी जब चाहे तब ले सकता था। कभी कभी सामंतों के पास ही गेहूं पीसने की चक्की, शराब बनाने की भट्टी और रोटी सेकने की तंदूर भी हुआ करते थे, जिसका इस्तेमाल के लिए किराया देना अनिवार्य था। अपनी जमीन बेचने पर किसान को कभी कभी मूल्य का 20% जमींदार को देना पड़ता था। शिकार के लिए जानवर चाहिए और जानवर खेतों का नुकसान करते थे, लेकिन शिकार खेलने पर केवल सामंतों का अधिकार था, इसलिए किसान जानवरों को कभी नहीं मार सकते थे। हवेलियों में हजारों की संख्या में कबूतर पाले जाते थे जो खेतों के खेत साफ कर जाते थे, लेकिन उन्हें मारा नहीं जा सकता था। एक तरफ वे सामान्य लोगों के कार्य से मुक्त थे, दूसरी तरफ प्रतिष्ठित पदों पर जैसे सेना के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में उन्हीं की नियुक्ति हो सकती थी। कुलीनता के प्रति मोह और उसके प्रति सम्मान तो था ही, लेकिन विडंबना यह थी कि खानदानी सामंतों की संख्या बहुत कम थी। अधिकांश के पास तो दो एक पीढ़ी से ही खरीदी गई रियासत थी। राजा आवश्यकता पड़ने पर धन लेकर लोगों की पदवी और ओहदे बांटता था। इस दृष्टि से नव सामंत वर्ग विकसित हुआ जिससे लोग चिढ़ते थे, क्योंकि इनके विशेषाधिकारों का कोई परंपरागत आधार नहीं था। पूंजीपति और मध्य वर्ग के उन लोगों का इस्यालु होना स्वाभाविक था जो सामंतों से योग्य और धनी होते हुए भी उनके ऋणदाता होने के बावजूद विशेषाधिकार से वंचित थे। हमारा अगला हेडिंग है बढ़ती चेतना और क्रांति की बौद्धिक पृष्ठभूमि। फ्रांस की स्थितियों से वहाँ की जनता, विशेषकर मध्य वर्ग, पूरी तरह अवगत हो रहा था। वह समझने लगा कि फ्रांस में यथास्थिति सदा नहीं बनी रहेगी, परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए। परिवर्तन की संभावना और उसके लिए आकांक्षा पैदा करने में फ्रांसीसी विचारकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 18वीं शताब्दी में वैचारिक स्तर पर नया दृष्टिकोण अपनाया जा रहा था। कोपरनिकस और गैलीलियो ने कोपरनिकस और गैलीलियो के बाद विज्ञान की बढ़ती हुई प्रगति और ज्ञानोदय का युग आया, जिसे लेखकगण सामाजिक बुराइयों का उद्घाटन करने में अपनी प्रतिभा का उपयोग करने लगे। उनका नारा तर्क, सहिष्णुता और मानवता था। ये लोग क्रांति नहीं चाहते थे, किंतु इसके प्रभाव से परिवर्तन की प्रक्रिया को बल मिला। एंगेल्स ने इस समय वैचारिक लेखन को शानदार भौतिकवादी कहा। उसके अनुसार अंतर्वस्तु के रूप में दोनों दृष्टियों से इस समय फ्रांस की आत्मा का असाधारण उत्कर्ष हुआ। उस समय जो हुआ अंतर्वस्तु की दृष्टि से उसे आज भी उच्च कोटि समझा जा सकता है, परंतु इस दृष्टि से वह आज भी अद्वितीय माना जाता है। कृपया ध्यान देंगे, हम आगे जो रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं वह हमारे कोर्स में इन प्रश्नों के माध्यम से पूछा जाता है, जैसे फ्रांस की क्रांति में योगदान देने वाले प्रसिद्ध वैचारकों का नाम बताएं, और इन्हें हम निम्न हेडिंग में बताने जा रहे हैं। फ्रांस की क्रांति में योगदान देने वाले प्रमुख वैचारक निम्नलिखित हैं। एक, वोल्टेयर। वोल्टेयर 1694 से 1778। वोल्टेयर अपनी लेखनी में मानो स्याह के बदले विष का प्रयोग करता था। इसलिए ऐसा सोचना पड़ता है कि उसके व्यंग्यपूर्ण कथन काफी मर्माहत करने वाले थे, जिन्होंने तात्कालिक व्यवस्था, विशेषकर सामाजिक धार्मिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी। वाल्टेयर न्यूटन को सीरीज और सिकंदर से भी अधिक महान मानता था। उसके विचार से हमारे सम्मान का पात्र वही है जो हमारे मस्तिष्क पर सच्चाई की शक्ति से प्रभाव डालता है, वह नहीं जो हिंसा के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करता है। हमें सम्मान उसका करना चाहिए जो संसार को समझाता है, उसका नहीं जो भ्रष्ट करता है। वह लॉक के विचारों से भी बहुत प्रभावित था। लॉक के अनुसार मनुष्य के विचार जन्मजात नहीं होते और न ही उन पर कोई दैवीय प्रभाव होता है। मनुष्य के ज्ञान का स्रोत वे प्रभाव और अनुभूतियां होती हैं जो बाहर से प्रवेश करती हैं। इस प्रभाव के अनुसार वोल्टेयर ने इंग्लैंड के संवैधानिक तंत्र का फ्रांस में प्रचार करने का बीड़ा उठाया, क्योंकि उसके विचार से यह तंत्र ही फ्रांस की मुक्ति का एकमात्र तरीका था। वह इंग्लैंड में व्यवसायिक वर्ग की प्रतिष्ठा से बहुत प्रभावित था। फ्रांस में इस वर्ग के प्रति वितिष्णा व्याप्त थी, इसे वाल्टेयर ने अनुचित माना और देश को समृद्ध करने वाले व्यवसायियों को समाज के लिए उन सामंतों से भी अधिक उपयोगी बताया, जिनकी दिनचर्या राजा के सोकर उठने से फिर सो जाने के इर्द गिर्द मंडराती रहती थी। सामंत और मध्यम वर्ग में अंतर विरोध को देखते हुए हमें वाल्टेयर के विचारों में पूंजीपति वर्ग के प्रति पक्षधारकता का एहसास मिलता है, और इस प्रकार फ्रांस में बुर्जुआ क्रांति की पृष्ठभूमि साफ होती है। वाल्टेयर नास्तिक नहीं था, लेकिन उसका मत था कि ईश्वर को अपने प्रकृति और मानव के हृदय में अभिव्यक्त करता है, बाइबल और चर्च में नहीं। इसलिए वह प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों की चर्चों की आलोचना करता है। वह पोप को विदेशी पादरी कहा करता था, और कैथोलिक चर्च और पादरियों पर उसने विशेष रूप से प्रहार किया। वह व्यंग में कहा करता था कि दुनिया में एक ही तो ईसाई है, वह भी सलीब पर चढ़ा दिया गया। कैथोलिक चर्च से पाखंड, अंधविश्वास और क्रूर असहिष्णुता के कारण उसे नष्ट कर देने का आह्वान किया। वाल्टेयर ने एक तंत्र की भी आलोचना की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हुए उसने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी बात गलत है, फिर भी तुम्हारी अभिव्यक्ति के आधार के लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार उसने तात्कालीन फ्रांसीसी समाज और व्यवस्था की कटु आलोचना की। उनके व्यंग के चुटकुले पन से लोग आहत हो जाते थे। उनके विचारों ने फ्रांस को पूरी तरह झकझोर डाला, लेकिन उसके विचार प्रायः सतही होते थे और अनावश्यक निर्णयों तक भी पहुंच जाते थे। वह जानता था कि क्या इच्छा है, लेकिन इस अच्छे कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए उसके पास न तो विश्लेषण था और न ही कार्यक्रम। वह इस बात का सुझाव न दे सका कि इंग्लैंड की संस्थाएं फ्रांस में कैसी लाई जाएं, इसलिए उसकी आलोचना को रचनात्मक स्वर नहीं मिल सका। इसके बावजूद वाल्टेयर अपने समय का सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित लेखक था। फ्रेडरिक महान जैसे शासक से उसकी मित्रता थी और उसके साथ वह वर्षों तक बर्लिन में सम्मानित अतिथि की तरह रहा। रूस की महारानी कैथरीना भी उसे अपने दरबार में बुलाने के लिए ललायत थी। दूसरी ओर सामंत और पादरी उससे आतंकित रहते थे। उसकी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया जाता था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इंग्लैंड के विषय में लिखे गए उसके लेख को पेरिस के परलाम में खुला जलाने का आदेश दिया गया था। उसे 18वीं शताब्दी के पुनर्जागरण का प्रस्तोता कहा जाता है और उसे फ्रांस की ही नहीं सारे यूरोप में विवेक, प्रबुद्धता और प्रगति के सिद्धांत पर प्रचार प्रसार का श्रेय प्राप्त है। उसे विश्वास हो चला था कि फ्रांस धीरे धीरे उसकी बातें जरूर मानेगा और भविष्य बेहतर होगा। उसने एक युवा मित्र को लिखा था, फ्रांसीसी लोग समझते तो हैं लेकिन देर से, युवा लोग बेहतर दिन देखेंगे। उसकी मृत्यु के एक दशक बाद हुई क्रांति उसके विचारों के कार्यान्वयन की पुष्टि करती है। फ्रांस की क्रांति में योगदान देने वाले अगले लेखक मांतेस्क्यू 1685 से 1755। मांतेस्क्यू को राजनीतिक विज्ञान का पहला महत्वपूर्ण विचारक कहते हैं। सबसे पहले उनके फारस के खत की काल्पनिक यात्रा में के माध्यम से तत्कालीन फ्रांसीसी समाज की आलोचना की। वह इंग्लैंड से बहुत प्रभावित था और राजतंत्र का समर्थक था, लेकिन वह राजा की शक्ति को संतुलित या नियंत्रित करने के लिए अन्य संस्थाओं को शक्तिशाली बनाना चाहता था। दूसरी ओर उसकी महत्वपूर्ण पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में राज्य का तर्कपूर्ण विवेचना है। उसने इतिहास को सामने रखकर यह सिद्ध किया कि सरकारों का आधार स्वेच्छा से नहीं बनाया जा सकता। उनका जन्म विशेष स्थिति में होता है और उन्हें देश काल की जनता की आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। उसने राज्य की तीन काम बताए, कानून बनाना, लागू करना और कानूनों की व्याख्या करना तथा न्याय करना। इसके लिए उसने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की कल्पना की। उसने इन तीनों के कार्यों को पृथक संस्थाओं द्वारा किए जाने अर्थात शक्ति के विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर का विचार दिया। इस प्रकार राजा की निरंकुशता के स्थान पर एक वैधानिक राजतंत्र का उसने पक्ष लिया। उसने परोक्ष रूप से फ्रांस के एकतंत्र और केंद्रीकरण की आलोचना की तथा राजतंत्र को बेहतर बनाने के सुझाव सामने रखे। पहली बार परंपरागत व्यवस्था का एक विकल्प प्रस्तुत किया। उसकी बातें कितनी मूल्यवान थी इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि अमेरिकी संविधान ने इन्हें स्वीकार किया और क्रांति काल में ही उसके सिद्धांतों को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया। आज भी इस सिद्धांत की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई है। विभिन्न देशों के संविधान में उसे कमोबेश स्वीकार किया गया है। भारत के संविधान में भी न्यायपालिका, कार्यपालिका को पूरी तरह अलग अलग रखने का विधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्वीकार किया गया है। रूसो हमारे तीसरे प्रबुद्ध विचारक हैं रूसो, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। रूसो एक रोमांटिक व्यक्ति था। उसने अपने आचरण तथा लेखन में रूढ़ियों की अवहेलना करके स्वतंत्रता और समानता का विचार प्रस्तुत किया था। उसने अपनी कुशल लेखनी के सहारे साहित्य, शिक्षा, समाज और राज्य के विषय के नए विचार प्रस्तुत किए और लोगों को भावनाओं और विवेक दोनों ही स्तरों पर प्रभावित किया। उसने समान इच्छा और जनता में निहित प्रभुसत्ता का विचार दिया। उसने राज्य की दैविक सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए बताया कि राज्य का जन्म किसी समझौते से होता है। इस तरह उसने समझौता करने वाले अर्थात जनता की शक्ति को जनता को शक्ति संपन्न बताया। बहुत विवेकपूर्ण और तर्कसंगत विश्लेषण न कर पाने के बावजूद उसने तत्कालीन समाज को काफी हद तक प्रभावित किया। उसने व्यक्ति की नैसर्गिक गुणों को सहज विकास को महत्व दिया। समाज की असमानताओं के स्रोत की बात करते हुए उसने स्पष्ट किया कि मनुष्य संपत्ति और संस्थाओं के बंधन में धीरे धीरे अपने आप को बांधते हुए कुटिल और प्राकृतिक से दूर होता गया है। एक दूसरी पुस्तक एमिले में इसे एक बार और सुने एक दूसरी पुस्तक एमिले में उसने शिक्षा को व्यक्ति के सहज और नैसर्गिक विकास का उपकरण बताया। आज के मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन जैसी शिक्षा पद्धतियों का पूर्वाभास उससे मिलता है। अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक बार और सुने सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक में उसने राज्य की उत्पत्ति की एक परिकल्पना प्रस्तुत की। उसके अनुसार मनुष्य पहले प्राकृतिक अवस्था में रहता था और वह आदमी परंतु निर्मल था। इस तरह उसने एक जंगली किंतु सरल समाज की कल्पना की। इस समाज में सभी लोगों ने सबके हित में अपने अपने अधिकारों का परित्याग कर एक संवेद शक्ति गठित करने के लिए समझौता किया और राज्य का जन्म हुआ। इस राज्य में सामान्य इच्छा ही प्रभु इच्छा थी। दूसरी शब्दों में उसने सत्ता का स्रोत किसी एक व्यक्ति या दैवी इच्छा को न मानकर समनिष्ठ समाज के समूहित रूप को माना। उसने घोषित किया कि जनता की इच्छा ही सरकार को वैध बनाती है। उसके विचार न तो इतिहास के तथ्यों पर आधारित थे और न ही तर्कसंगत थे, लेकिन उसने पुनः प्राकृतिक स्थिति की ओर लौटने की बात करके समाज की कृत्रिमता पर प्रहार किया और साहित्य से लेकर सामान्य जनजीवन हर कहीं उसका शीघ्र प्रभाव पड़ा। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, लेकिन प्रत्येक स्थान पर बंधनों में बंधा है, कहकर उसने एक साथ मनुष्य में स्वतंत्रता की लालसा जगाई और उसे बंधनों से मुक्त होने की प्रेरणा दी। रूसो की आलोचना करते हुए यह कहा जाता है कि उसने मनुष्य की प्रगति को नकारा और मनुष्य को पशु बना देना चाहा। वह कल्पना के रूप में रहता था और उसे यथार्थ की कोई पहचान नहीं थी। जो भी हो, उसने एक रूढ़िवादी समाज को उद्वेलित तो कर ही दिया था। यद्यपि उसने क्रांति के विचार और तात्कालीन व्यवस्था का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया, तथापि तात्कालीन संस्थाओं को नकार कर उसने परिवर्तन की इच्छा और संभावना स्पष्ट की। उसकी आस्था का केंद्र मानव था, इसलिए स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे सिद्धांत उसकी लेखनी से प्रकट हो सके। तात्कालीन समाज में लोगों का मोह भंग करने में उसे बड़ी सफलता मिली और मध्यम वर्ग उसका अनन्य भक्त हो गया। क्रांति की अवधि का सबसे शक्तिशाली नेता, इसे ध्यान से सुने, क्रांति की अवधि का सबसे शक्तिशाली नेता रोब्सपियर, इसे एक बार और सुने रोब्सपियर तो उसे मसीहा और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पवित्र ग्रंथ की तरह मानता था। क्रांति पर रूसो का स्पष्ट प्रभाव पड़ा, लेकिन यह प्रभाव प्रेरणा की सीमा तक ही था। नेपोलियन कहा करता था, रूसो बहुत बुरा था और उसी ने क्रांति को आसन्न किया। व्यवहारिक स्तर पर उसके विचार क्रियान्वयन नहीं हो सकते थे, लेकिन रूसो विचारकों से सम्मानित होते हुए भी एक रूमानी लेखक माना जाता है, परंतु उसकी प्रतिभा पूर्णतः असंदिग्ध है। अगला हेडिंग है विश्वकोश। ज्ञान की एक समन्वित कोश तैयार करने की दिशा में 1723 में इंग्लैंड में एक विश्वकोश तैयार किया गया, जिसका अनुवाद करने के प्रयास के दौरान दिदरो, एक बार और सुने, विश्वकोश के अनुवाद करने के दौरान दिदरो ने एक फ्रांसीसी विश्वकोश की रूपरेखा तैयार कर डाली। इस समय जर्मनी में 64 भागों में इस तरह का विश्वकोश प्रकाशित हुआ था, लेकिन बाद में दिदरो ने विश्वकोश को ऐतिहासिक महत्व प्रदान किया। दिदरो एक उदार और सचेतक विचारक था। इंग्लैंड के प्रभाव में आकर उसने विवेक के महत्व पर बल देते हुए फिलास्फिक थाट नामक पुस्तक लिखी। एक बार और सुने, फिलास्फिक थाट नामक पुस्तक लिखी। उसका कहना था कि जिस विषय पर कोई प्रश्न नहीं उठता हो उसे कभी भी प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। विश्वास करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए शंका करना अनिवार्य है। दिद्रो को उस समय के प्रख्यात गणितज्ञ डालेम्बर, एक बार और सुने, प्रख्यात गणितज्ञ डालेम्बर का सहयोग प्राप्त था। इन दो विद्वानों ने अन्य विशेषज्ञों की मदद से एक ऐसा विश्वकोश तैयार किया जिसमें छोटे बड़े सभी प्रश्नों की नई आधिकारिक व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। इसमें उन्होंने उन प्रश्नों को भी शामिल किया जिन्हें वे स्वयं नहीं मानते थे, फिर भी कोश में प्रस्तुत किए गए उनके तर्कों से गलत विचार को समाप्त करने का आधार मिलता है। कोश के कुछ भागों का प्रकाशन होने पर और प्रचार बढ़ने से स्थापित संस्थाएं आतंकित हो गईं। चौतरफा प्रहार शुरू हुआ, सरकार ने हस्तक्षेप किया। डालेम्बर क्षुब्ध और निराश हो गया। उसने अपना क्षोभ वाल्टेयर को लिख भेजा। वाल्टेयर ने उसे प्रोत्साहित करते हुए लिखा कि हम मानव मस्तिष्क में होने वाली महान क्रांति के बहुत करीब हैं और हम लोग इसके लिए आप लोगों के ही विशेष कृतज्ञ हैं। वाल्टेयर ने डिडरो को फ्रांस के बाहर अन्य किसी देश में जाकर लिखने की सलाह दी जहां उसे सुविधा मिले, लेकिन डिडरो अडिग रहा और हर तरह के व्यवधानों के बावजूद कोश के एक एक खंड प्रकाशित होते रहे। कोश ने संतुलित ढंग से धार्मिक असहिष्णुता, दोषपूर्ण कर व्यवस्था, गुलामों के व्यापार, निर्मम फौजदारी कानून जैसी व्यवस्थाओं पर प्रहार किया। कोश ने मध्यमवर्गीय वर्ग की चेतना की भी झलक दिखाई। ऐसे स्थलों पर दिदरो लिखता है कि विभिन्न देशों के लोगों का एक दूसरे के लिए उपयोग आवश्यक हो गया है ताकि भूमि और उद्योग के उत्पादनों का आदान प्रदान हो सके। वाणिज्य मनुष्य के आपसी संबंधों का नया सूत्र है। विज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र तथा राजनीति जैसे विषयों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिकाधिक लेख लिखे गए। दिदरो ने स्वयं सैकड़ों लेख लिखे। उस अवधि में किसी भी विषय की परंपरागत मान्यता केवल इसलिए नहीं स्वीकार की गई कि वह एक समय प्रतिष्ठा और स्वीकृति रही। पुनर्जागरण काल की तर्क परंपरा को कसौटी बनाया गया। परिणामतः एक ही स्थान पर विभिन्न विषयों की नई व्याख्या उपलब्ध हो गई और नगरों के मध्यमवर्गीय पाठकों को ज्ञान का विस्तार करने और समझने का अवसर मिला। इससे जो दृष्टिकोण विकसित हुआ वह तात्कालीन व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकता था, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन तब तक उसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हो चुका था। यहाँ तक कि रूस की जारीना कैथरीना भी इसकी प्रशंसा करने लगी थी। इस प्रकार यह विश्वकोश मध्यमवर्गीय लोगों के प्रशिक्षण और परिवर्तन के लिए अनुकूल मानसिकता का निर्माण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। दिद्रो को मार्क्स अपना सबसे प्रिय गद्य लेखक मानते थे और एंगेल्स उसे प्रगति की भौतिकवादी व्याख्या के संदर्भ में पूरी तरह न्याय और सत्य को समर्पित मानते थे। हमारा अगला टॉपिक है अर्थशास्त्री। 18वीं सदी के मध्य में ज्ञान की नई शाखा राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। यह खोजबीन शुरू हुई कि देश की संपत्ति का स्रोत क्या है, वस्तुओं का उत्पादन और वितरण कैसे होता है, मांग और पूर्ति के क्या नियम हैं, धन का क्या उपयोग होता है और उसका उद्योग और वाणिज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके पहले इन विषयों पर वैज्ञानिक ढंग से ही सोचा ही नहीं जाता था। अब इंग्लैंड और फ्रांस में इन विषयों पर विधिवत विचार शुरू हुआ। इंग्लैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी ऐतिहासिक पुस्तक इंक्वायरी इंटू द नेशन एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन में, इसे एक बार और सुने, इंक्वायरी इंटू द नेशन एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन में लिखी, जो इस विषय पर पहली पुस्तक थी। इससे प्रभावित होकर फ्रांस में आर्थिक समीक्षा शुरू हुई। फ्रांसीसी विचारकों ने धरती को एकमात्र उत्पादक तत्व माना। ऐसे विचारकों में केन और तुर्जू जैसे लोग प्रमुख थे। धरती से संबंधित कृषि, जंगल और खनिज को उत्पादन का साधन और धन का स्रोत माना गया। उद्योग और वाणिज्य पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अब तक राजकीय नियंत्रण में प्रतिष्ठित वाणिज्यवाद के विरुद्ध लोगों ने किसी प्रकार के हस्तक्षेप में मुक्त व्यापार नीति का विचार सामने रखा। केन का कथन है कि यदि किसान गरीब है तो राज्य और राजा दोनों गरीब हैं। उसे विश्वास था कि भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाने से देश की आर्थिक स्थिति स्वतः सुधर जाएगी। केन और एडम स्मिथ के विचारों में निकटता है। इन विचारों ने आर्थिक स्थिति की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अवरोध पैदा करने वाली राजकीय प्रतिबंधों का आलोचना की। इससे राजनीतिक क्षेत्र में तात्कालीन व्यवस्था की हो रही आलोचना पूरक सिद्ध हुई। इससे सही उत्तर भले ही न दिया हो, लेकिन प्रश्न अवश्य सही उठाए। हमारा अगला टॉपिक है जनमत। तात्कालीन फ्रांस में जनमत जानने का साधन उपलब्ध नहीं थे। स्थानीय संस्थाएं या कोई व्यवस्थापिका सभा थी ही नहीं। कुल मिलाकर न्यायिक संस्थाओं के रूप में पार्लमा का अस्तित्व था, जो किसी भांति अंकुश रख सकती थी। वैसे तो प्रांतों में भी पार्लमा थी, लेकिन पेरिस की पार्लमा का विशेष महत्व था। नियम के अनुसार किसी भी नए कानून को पार्लमा में पंजीकृत कराना आवश्यक था, क्योंकि इसके अभाव में निर्णय करते समय नए कानून को ध्यान में रखना कठिन था। राजा द्वारा कानून बनाए जाने की आधिकारिक स्वीकार करने के बावजूद पार्लमा कभी कभी अनुचित कानून का विरोध करती थी और प्रायः अपना यह विरोध पर्चों में छापकर वितरित करवाती थी। ऐसी स्थिति में या तो राजा उपेक्षित परिवर्तन करता था या स्वयं पार्लमा के समक्ष जाकर कानून के पंजीकरण का आदेश देता था। इस स्थिति में पार्लमा के लिए आदेश का पालन करना अनिवार्य होता था। लेकिन क्रांति के पूर्ववर्ती वर्षों में पार्लमा ने ऐसे कानूनों को वैध मानने से इनकार करना शुरू कर दिया। इस तरह अन्य संस्थाओं के अभाव में पार्लमा सरकारी नीतियों के प्रति जनता का ध्यान आकर्षित करती थी और लोगों को यह बताती थी कि देश के आधारभूत कानूनों को मनमाने ढंग से बदलने का अधिकार राजा को नहीं है। यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि पार्लमा कोई प्रगतिशील संस्था नहीं थी। इसके सदस्य विशेषाधिकार संपन्न लोग ही होते थे। स्टेट्स जनरल के क्रांतिकारी कार्य शुरू होने के समय इन लोगों ने निरंकुश तंत्र के विरुद्ध असंतोष बढ़ने में भले ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, परंतु पार्लमा ने उनका विरोध शुरू कर दिया था। जनमत का प्रभाव सामने न दिखने पर यह महसूस किया जा सकता था। दैनिक समाचार पत्र तो नहीं थे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर पर्चे छापकर बांटे जाते थे। इस काल में तत्कालीन बुद्धिजीवी बड़े दक्ष थे। जनता को इन पर्चों का इंतजार रहता था। सरकार जानती थी कि इन पर्चों का जनता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सरकार ने वाल्टेयर, दिदरो और मॉन्टेस्क्यू जैसे लेखकों के लेख को हतोत्साही करने के लिए कभी कभी उनका दमन भी किया। इस तरह असंतोष और परिवर्तन की आकांक्षा जनमत का रूप लेकर किसी न किसी माध्यम से अभिव्यक्त होती थी। जनमत की जागरूकता का सबसे बड़ा प्रमाण उस समय सामने आया जब स्टेट्स जनरल का आह्वान किया गया और संपूर्ण फ्रांस में कुछ ही सप्ताह के अंतर्गत हजारों मांगपत्र तैयार किए गए। इस तरह क्रांति के पहले नई चेतना का प्रसार तो हो ही रहा था, लेकिन व्यवस्था में आर्थिक परिवर्तन पर विशेष बल नहीं दिया जा रहा था, न ही राजतंत्र का कोई विकल्प ढूंढा जा रहा था। हालांकि सभी ने प्रश्न खड़े किए और यथास्थिति के पोषक की नींव हिला दी। 17वीं शताब्दी से ही बढ़ रहे तर्क और विवेक का महत्व फ्रांस में चरमोत्कर्ष पर था। हर तरह से संपन्न मध्यम वर्ग परिवर्तन के लिए ललायत था। समाज में उनका स्थान गौण होने से वह क्षुब्ध और उद्वेलित था। साथ ही पादरी और सामंतगण भी असंतुष्ट थे। साहित्य के अध्ययन और गोष्ठियों की बहस का महत्व बढ़ रहा था। समाचार पत्र अब कस्बों और छोटे बाजारों में भी बिकने लगे। नगरों विशेषकर पेरिस में कई तरह के क्लब स्थापित हो रहे थे। कार्दिलिये जैसी संस्थाओं में बहसें इसे एक बार और सुने कार्दिलिये जैसी संस्थाओं में बहसें और परिसंवाद हुआ करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हुए थे उनमें 17वीं शताब्दी में ही विचारों में परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। परिणामतः ज्ञानोदय काल में समाज के संपन्न और स्थापित लोगों की रूढ़ियों का पोषण करने वाली रूढ़ियों से असंतुष्ट लोगों ने तर्क का सहारा लेकर प्रहार करना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी विचारकों ने इसे और आगे बढ़ाया। तात्कालीन सामाजिक और धार्मिक स्थितियों में परिवर्तन की संभावना पर उन्होंने बल दिया और उसे वैचारिक आधार प्रदान किया। कहा जाता है कि फ्रांसीसी दर्शकों ने क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। यहाँ यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि विचार जिस समाज में पैदा होते हैं वहाँ की आर्थिक स्थितियों का उन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह विचार किसी शून्य में नहीं वरन आर्थिक सामाजिक परिवेश में पैदा होते हैं। इस प्रकार एक क्रम स्थितियाँ विचार स्थिति चलता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रांस उन स्थितियों में 18वीं शताब्दी में था, उसमें परिवर्तन अनिवार्य हो गया था। अतः तदनुकूल विचार पैदा हुए और उन्होंने परिवर्तन की आवश्यकता और उसके स्वरूप के बारे में समाज में एक वर्ग को जागरूक बनाया। इसी वर्ग ने परिवर्तनकारी संघर्ष अर्थात क्रांति का नेतृत्व किया।